आप सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड, SBS ऑडियो पॉडकास्ट जो आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के तरीके में मदद करता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नए हैं तो आपने कई जगहों पर ट्रेडिशनल ओनर्स, कंट्री या फर्स्ट नेशंस का जिक्र देखा होगा। यहाँ बसने वाले कई लोग ये समझना चाहते हैं कि इसका क्या अर्थ है और उनके साथ कैसे जुड़ें। हो सकता है कि कहीं कुछ पक्का ना लगे, लेकिन यही सीखने और अपनी जगह बनाने का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट नेशंस के लोग 60,000 से अधिक सालों से इस ज़मीन पर रह रहे हैं और इसकी देखभाल कर रहे हैं। इस कनेक्शन को समझने और उसका सम्मान करने से आपको ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद मिल सकती है। आप चाहे कहीं भी रहते हो और आपका इंग्लिश भाषा का स्तर कोई भी हो, आप किसी भी पृष्ठभूमि के हों, इस एपिसोड में आप फर्स्ट नेशन कल्चर और कम्युनिटी के बारे में जानेंगे कि उनके साथ कैसे जुड़ा जाए। और मैं हूँ अनीता बरार। कई माइग्रेंट शायद इंडिजिनस कल्चर से जुड़ना चाहते हों, लेकिन उन्हें शुरू करने का सही तरीका समझ नहीं आता। कुछ लोग ये सोच के डर जाते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि कहाँ से शुरू करें। तो असल में ये पहला कदम कैसे दिखता है, तो इसलिए हमने यावरू की महिला शनन डॉटसन, जो द हीलिंग फाउंडेशन के CEO हैं, उनसे हमें गाइड करने के लिए कहा। वो कहती हैं कि पहले तो यही समझें कि सिर्फ एक इंडिजिनस कल्चर नहीं है, बल्कि ये कई हैं।
There is importance in being able to educate yourself around the story of Aboriginal and Torres Strait Islander people as a unique peoples that have the oldest continuing cultures in the world, and understanding that there is not just one sort of homogenous culture. There's hundreds of different languages across the country. And even just to be able to educate yourself about that vastness, I think is really important.
ये पहला स्टेप ऑनलाइन अपने समय पर आसान इंग्लिश में किया जा सकता है। फर्स्ट नेशंस के लोगों की डाइवर्सिटी के बारे में जानने से आप लोगों से आमने सामने मिलने पर अधिक सहज और अपने आप को तैयार महसूस कर सकते हैं। एक बार जब आप इस डाइवर्सिटी के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो अगला कदम उस कंट्री यानी इंडिजिनस लैंड को समझना है जिस पर हम अभी रहते हैं, वो जिस जमीन पर हम काम करते हैं और अपने परिवार को पालते हैं।
It's important to try and find some connections with your local community. Understanding where you live and knowing what country you're on, it's very easy these days to find out who the traditional owners are in your area. And there are often ways to be able to connect with traditional owners or Aboriginal people in your area, whether it be through Aboriginal land councils or cultural centres or other Aboriginal groups that do community events.
Traditional owners और अपने सबब का इस्तेमाल कर एक सिंपल सर्च से आपको अक्सर भरोसेमंद जानकारी मिल जाती है। आपकी लोकल काउंसिल वेबसाइट एक और बढ़िया सोत्र है। अगर आप किसी रीजनल एरिया में रह रहे हैं, तो ये वेबसाइट अक्सर कम्युनिटी फेस्टिवल, लोकल टूर्स, वर्कशॉप या फैमिली फ्रेंडली इवेंट्स की लिस्ट देती हैं। अब बड़े नज़रिए से देखें तो हर स्टेट और टेरिटरी में इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कल्चर स्पेसिफिक रिसोर्स देते हैं। डॉटसन कहती हैं कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी मदद कर सकते हैं। ये लिस्ट पूरी तो नहीं है, लेकिन ये शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है।
The Healing Foundation is an organization that supports stolen generation survivors and stolen generation organizations. There's also the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, which has a great amount of resources around language and culture and historical records. You also have Reconciliation Australia, which has information about the reconciliation process in Australia and how we can better relationships between Indigenous and non-Indigenous people.
पूरे ऑस्ट्रेलिया में कम्युनिटीज के कई इवेंट्स होते हैं जिनमें हर बैकग्राउंड के लोगों का स्वागत होता है।
There's NAIDOC Week every year in July, which was really born out of celebrating Aboriginal and Torres Strait Islander cultures in a really positive, open and sharing way. We also have Reconciliation Week, end of May, early June, And one of the huge events for our organisation is the annual anniversary of the apology to the Stolen Generations in February, but also Sorry Day, which is in May.
In events mein aksar music, art, dance, khana aur storytelling shamil hota hai. Aisi activities jiske liye koi bahut adhik English ki jankari zaruri nahi hoti aur ye aksar parivaron ke liye sahi hoti hai. Dodson kehti hai ki kai log chahe wo migrant hon ya lambe samay se Australia mein reh rahe hon, wo dar jate hain ki kahin unse koi galti na ho jaye ya wo kehne se hi ghabrate hain.
I think sometimes there is a fear of getting it wrong or saying the wrong thing, which I understand, but also I don't think that that fear should stop people from engaging, because the whole point is to be open, to be asking questions. And most people would know how to do that in a respectful way with anyone. It doesn't matter if you're Aboriginal and Torres Strait Islander or anyone.
अच्छे रिश्ते बनाने के लिए भरोसे की आवश्यकता होती है और इसमें समय लगता है. तो सुनना सबसे अच्छी स्किल है. इसके लिए किसी खास जानकारी की भी आवश्यकता नहीं है.
I think my advice is to show up, to have an open heart and open mind. Our communities are very welcoming and we are wanting to share about who we are, our histories, our culture, our communities. And I think that if you can show up, that's the first step to building those better relationships.
चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने से हों या 6 साल से, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से जुड़ने का अर्थ परफेक्ट होना नहीं है. इसका अर्थ है कि मौजूद रहना, उनके बारे में जिज्ञासु होना और उनका सम्मान करना. और कई नए माइग्रेंट्स के लिए ये घर जैसा महसूस करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका भी हो सकता है. ये एक SBS ऑडियो पॉडकास्ट था. ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के और दूसरे पॉडकास्ट के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाएं.